फिर आगे कुछ ऐसे लोगों की मिसाल आ गई है, मिनन नास बार बार आ रहा है ना, वह मिनन नासी वह मिनन नासी। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे बेवफा है, इनको देखो ऐसे पैदा किया, वो बड़े हो गए, उसी रब ने जिसने पैदा किया था उसके बारे में झगड़ने लगे, वो अता पता कुछ नहीं है, कुछ अपने आप को भी नहीं पहचानते तुम क्या थे। इतने यानी एहसान फरामोश हैं कि उसके बारे में झगड़े करने लगे। ठीक है, अब इनमें से कुछ ऐसे भी हैं। अब एक और बंदे की मिसाल बताई गई, वह भी नन्नासी, लोगों में से कोई एक ऐसा भी है। कैसा है वो? मैं याबुदुल्लाह अला हरफिन, जो अल्लाह की इबादत करते हैं अला हर्फ, किनारे पे रह के। जो कैसे इबादत करता है? किनारे किनारे पे रह के। किनारे पे रहना क्या चीज है? यहाँ पे एक तो ये बात समझ लें कि अरब शायरी में ना हर्फ लफ्ज को यूज किया जाता था, जब मैदाने जंग में कोई जो सिपाही होता था, जो ज्यादा लॉयल नहीं होता था ना अपनी फौज से, वो किनारे किनारे पे रह के लड़ता था। क्यों किनारे पे रह के लड़ता था? कि अगर मेरे जो मेरी कौम है जिनकी तरफ से मैं आया हूं, अगर ये हार गए तो यहां से भाग जाऊंगा, अगर जीत गए तो इनके साथ ही लग जाऊंगा। वो किनारे पे होता था ना ताकि भागना आसान हो जाए। तो किनारे पे इंसान तभी रहता है जबकि वो उसने भगोड़ा होता है, जब भागना होता है। ठीक है, और पूरा पूरा अंदर वो आता है जो पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं बस ये ठीक चीज ठीक है। ठीक है, तो लोगों में से भी कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की इबादत तो करता है। इबादत का मतलब क्या है? इताअत करता है, इबादत करता है, मगर वक्ती तौर पे वो ना कॉन्फिडेंट नहीं होता, श्योरिटी नहीं होती, बाउंड्री पे रहता है। अब उसके बाद क्या होता है? हालात को चेक करता है, हालात को, क्या सिचुएशंस आती हैं आगे। फा इन असाबहु खैरु नुतमान्ना बिही, फिर अगर उसको पहुंचती है कोई भलाई तो मुतमईन हो जाता है कि ये बड़ा अच्छा दीन है भाई, देखो हम दीन की तरफ आए, मेरे हस्बैंड का कारोबार भी चमक गया, मुझे इतनी बरकतें हुई, हमारे घर में ये हो गया ये हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, घर में खुशहाली आ गई, बच्चों में पहले लड़ाइयां होती थी अब वो भी अच्छे हो गए, बड़ा अच्छा हुआ। चलो यहां तक तो ठीक है, आगे बात क्या है? वह इन असौबत हु फितना तुम, और अगर पहुंचे उसको कोई आजमाइश, और मैंने आपको बताया फतना क्या होता है, तपाना, यानी अब जब बहुत तेज गर्म की जाती है ना कोई चीज, वो फिर तभी मेल्ट होता है और फिर इम्प्योरिटीज अलग होती है ना, बहुत तेज हीट उसको दी जाती है। तो आजमाइश में भी बड़े सख्त हालात आते हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही तो नहीं ना आजमा लेता। जब सख्त कोई चीज आजमाइश आती है, टेस्ट आता है बड़ा सख्त, तो क्या करता है? नैन कौलब आला वजही ही, पलट जाता है अपने चेहरे पर। वही बंदा जो पहले खैर आने पे बड़ा सेटिस्फाइड था, अब जब के कोई आजमाइश आई फौरन पलट गया अपने चेहरे पर, यानी वापस हो गए, वो पहले किनारे पे खड़ा था ना, वापस चला गया। ये आयत खास तौर पे, पहले इसका एक कॉन्टेक्स्ट भी आपको बता देती हूँ, फिर आपको और भी ये समझ आएगी। और ये सिर्फ याद रखें एक चीज के, उस जमाने के लिए नहीं, हम कह सकते वो तो उन लोगों के लिए था, वो ऐसे करते थे, और मुनाफिक होते थे ना वो ऐसे करते थे, नहीं, ये सब जमानों के लिए। और आज भी ऐसे लोग हैं जो दीन के किनारे पे खड़े होते हैं, फायदा हुआ फूले नहीं समाए, नुकसान देखा भाग खड़े हुए। अब बुखारी में जो हदीस है वो आपके सामने रखती हूँ ताकि आपको बात और भी समझ आ जाए कि जब कई अरब हिजरत करके मदीना पहुंचते थे, अब मदीना आके अगर बाल बच्चे हो गए, जानवरों में बरकत हो गई, कहते ये दीन बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा है, अगर ना हुआ तो कहते ये दीन तो बड़ा ही बुरा है, अस्तग़फिरुल्लाह। इब्ने अभी हातिम में भी ये मरवी है कि अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, इस्लाम कबूल करते, वापस जाके अपने अपने, यानी ये कबीलों में जाते, अपने इलाकों में जाते, अगर अपने यहाँ बारिश होती, पानी पाते, जानवरों में, घर में बरकत देखते तो इत्मीनान से कहते बड़ा अच्छा दीन है, और अगर इसके खिलाफ देखते झट से कह देते कि इस दीन में तो सिवाय नुकसान के, खसारे के कुछ भी नहीं। इस पे यह आयत उतरी थी। यानी अब अगर तो देखिए खुशहाली आती थी ना, जैसे इब्ने अब्बास फरमाते कि उनके यहाँ लड़का पैदा हो जाता, या ऊंटनी बच्चा दे देती, या उनको और कोई खुशी मिल जाती, तो दीन की बड़ी तारीफें करने लगते। और अगर कोई बला आ जाती, मुसीबत आ जाती, मदीने की हवा उनको सूट नहीं करती, या घर में लड़की पैदा हो जाती, या माल में कोई नुकसान हो जाता या कुछ होता, तो साफ ही कह देते हाय बड़ी मुश्किल है इस दीन में, तो मुश्किल ही मुश्किल है, हम तो जब से आए हैं ये। तो यानी दुनिया मिल गई तो बड़े खुश है दीन से, अब जहां दुनिया का नुकसान हुआ तो दीन भी बुरा हो गया। कबाज तो मुर्तद हो जाते थे, आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे हमें हमारा ये जो लॉस हुआ ना वो पूरा कर दें और ये अपना दीन वापस ले लें आप। यानी ये कोई सौदा है? ये नहीं, हम ना दीन को भी लेते हैं तो सौदे के तौर पे। आज मैं अल्लाह के दीन का अगर काम कर रही हूँ ना, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, अल्लाह को मेरे लिए सब अच्छा करना चाहिए। और अगर कुछ खुदा नखास्ता घर में कोई बीमारी आ गई, हस्बैंड की जॉब चली गई है, लोग क्या फायदा हुआ, इतना मैं दीन का काम करती थी और इतना मैं ये करती थी, अगर कुछ भी नहीं था फायदा क्या, मेरे सारे ये करने का क्या फायदा, मेरी नमाजों का क्या फायदा, मेरी इन तहज्जुदों का क्या फायदा, मेरे कुरान पढ़ने का क्या फायदा, क्या फायदा हुआ मुझे सारा, छोड़ो इन सब चीजों को। यानी इस तरह की बातें लोगों की, वो हम कहते हैं वो मुनाफिक ऐसे करते थे, वो बद्दू ऐसे करते थे, वो तो बद्दू थे और डिफरेंट कबाइल से आते थे ना, उन वो कोई यानी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होते थे, जिसको कहेंगे कि जैसे शहरी लोग होते हैं जरा उसके अंदर रिफाइन हो चुके थे, वो बद्दू लोग थे। वो अगर ऐसा करते थे, आज तो आप और मैं तो अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम 21वीं सदी के पता नहीं कौन से बड़े लोग पैदा हो गए हैं, और उन लोगों को क्या पता था जो कि हमें पता है। लेकिन ट्रेड्स तो वही हैं, तरीके तो हमारे भी आज वही हैं, आदतें वही हैं। किसी को मैंने कहते हुए अपनी जुबान से सुना कि वो कह रही थी हम तो पता नहीं क्या ऐसा हुआ, दीन की तरफ आए हम तो हमारा कारोबार इतना नुकसान हो गया, अच्छे हम दीन की तरफ आए। यानी तौबा इस्तग़फ़ार, कुरान ने खुद ऐसे लोगों की, कुरान पढ़ के तो देखो इसमें मुनाफिकीन की ये मिसाल बताई गई है, वो ऐसे करते थे। कुछ लोग ऐसे समझते थे कि ये जो है ये हम इस तरह से जब दीन की तरफ आए तो अल्लाह ताला को तो हमारा बड़ा रिगार्ड करके हमें बड़ा कुछ देना चाहिए। तो आप क्या अल्लाह से कोई सौदेबाजियां कर रहे हैं कि इस हाथ दे उस हाथ ले, मैंने तुझे नमाजें क्या चार दे दी, या मैंने तेरे पर ईमान के लिया मेरा बड़ा एहसान हो गया कि अब तू मेरे एहसान का बदला चुका। नऊज़ु बिल्लाह, कैसी बातें करते हो यार, इस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, या क्या मिसालें दूं मैं, तो दुख भी होता है ये बात कहते हुए कि बाज़ लोग फिर कहते हैं मेरा बेटा अल्लाह ने छीन लिया, मैंने तो अब नमाजें भी पढ़नी बंद करनी, मैंने क्या नमाज पढ़ के करना, पहले नमाजें पढ़ के मुझे कौन सा कुछ मिल गया जो अब मैं नमाजें पढ़ू। अरे अल्लाह से नाराजगी शो कर रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। ये वो लोग हैं जितनी देर खा रहे थे उतनी देर तो बड़े मुतमईन थे, और जब जरा सा अल्लाह ने कुछ झंझोड़ा, इम्तिहान लिया, आजमाइश में डाला, उसी बाद मुंह फेर लिया, देख नहीं लिया अय्यूब अलैहिस्सलाम को, क्या मिसाल हमने उनकी पढ़ी। वो तो नहीं फिरे किसी चीज से, उन्होंने तो नहीं कोई शिकवा किया, वो तो ये कहते भी रहे कि मैं कैसे किस मुंह से अल्लाह के सामने ये दुआ करूंगी ये बीमारी दूर कर दे, इतने सालों से उसने मुझे खुशहाली दी हुई थी, मैं तो उसका नहीं आज तक शुक्र अदा कर सका, उसके शुक्र अदा करने में 70 साल लगा दूं तो फिर भी उसके बाद नहीं मैं उसका शुक्र अदा कर सकता, इसकी मैं क्या बात कहूं कि अल्लाह इसको अब दूर कर दे। हम ये नहीं सोचते कि जितना हमारे पास कुछ है उसका हम आज तक नहीं कोई कदरदानी कर सके, उसके ऊपर नहीं हम शुक्र अदा कर सके, हम कैसे जरा सी आजमाइश आए तो ऐसे तड़पने लगते। ये इम्तिहान होता है, अल्लाह आजमा लेता है कौन खरा है और कौन खोटा है, कौन है जो बस लालच में आया था ये मिल जाए वो मिल जाए, अच्छा होना चाहिए सब कुछ। नहीं, आप अल्लाह को कोई ऑर्डर देते हैं, कोई होटल में गए हुए हैं, कोई किसी जगह पे गए हुए हैं कि हम आपके पास आ गए, हम आपको पे कर रहे हैं, हम आपके कस्टमर बन गए, हमें बेहतरीन सर्विस मिलनी चाहिए जी, ये आपका रवैया अल्लाह के साथ है। استغفراللہ ربی کہ میں نے اس کا دین کیا امبریس کر لیا، میں نے اس کا کلمہ کیا پڑھ لیا، اللہ کے اوپر تم نے کوئی احسان کر دیا؟ اب اس کو چاہیے کہ وہ یہ کرتا، اللہ کو تو چاہیے تھا میری یہ، میں نے تو اتنی دعائیں کی اور ایسی نہیں ہوا، اس میں باقاعدہ ناراضگیاں ہو رہی ہیں اور اس میں سارا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اب قرآن بھی چھوڑ دیا، میں نے یہ بھی چھوڑ دیا، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ یعنی یہ ایک ریئیکشن وہ شو کرتے ہیں کہ جی میں نے بھی نہیں آپ تیرا نماز پڑھنی، میں نے بھی نہیں آپ تیرا قرآن پڑھنا، تو اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تمہارا تو یہی امتحان ہو گیا، تم نے تو اپنا آپ دکھایا ہے بلکہ کہ میں کیا چیز ہوں، میں کتنی ناشکری اور میں کسی قابل ہی نہیں تھی، میں صرف مطلب کے لیے آئی تھی، میرا مطلب نہیں پورا ہوا تو میں چلی گئی، یہ ہو تم، یہ تصویر دکھائی اللہ تعالیٰ نے یہاں، اور یہ حال آج بہت کامن ہے، بہت کامن ہے، لوگ اس لالچ میں دین کی طرف آتے ہیں، ہمیں یہاں سے کچھ ملے گا، اب پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول شروع ہو جائیں گی ہونی، پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں سب چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جانی چاہیے، اور کچھ عرصہ نہیں کچھ ہوتا تو پھر کہتے اچھا چلو خدا حافظ، ایسے دین کو، یعنی دین نہ ہوا سودا ہوا، اور دین کی طرف جو آ گئے اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی بیماری ہے، مطلب بڑی سنسیریٹی سے آئے تھے لیکن اس کے بعد کوئی قربانی دینی پڑ گئی، کسی نے آپ کے حجاب کے اوپر کوئی چار باتیں کہہ دی، یا کوئی گھر میں بیماری آ گئی، یا وہ حکومت اب آپ کے خلاف آ گئی ہے، وہ اب آپ کو اتنی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی، اب آپ کی ایک آزمائش ہو گئی، اب اس کے بعد کہتے ہیں نا بھائی اس دین میں تو بڑے مسئلے ہیں اور یہ، اور آج کل تو نہیں ایسے چل سکتا، اور چلو جی خدا حافظ، آج ہی دنیا کے اندر اسلام غالب آ جائے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے اور اسلام کا عروج آ جائے، اور جیسے ہم اس زمانے میں تھے حضرت عمر کے زمانے میں، ویسے اسلام سارا غلبہ پا جائے پوری دنیا میں، تو دیکھنا سارے لوگ کیسے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے پہ کیسے فخر کرتے ہیں اور کیسے شوق کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کہتے ہیں ہم ہیں مسلم، ہاں؟ اور آج اگر اسلام کے اوپر ایسا وقت آ گیا، اسلام کا نام ہی ایک یعنی بدنامی کی اور برائی کا اور دہشت گردی کا اور اس طرح کا دنیا میں ایک سمبل سمجھا جانے لگا، تو سارے اپنی جان چھڑاتے پھر رہے ہو، بھاگ رہے اس سے، ہمارے ساتھ یہ نام نہ کہیں لگ جائے، بھائی لوگ مسلمان سمجھ لیں گے مجھے، یہ نام نہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو تم کیا پھر مسلمان ہو؟ تم تو جس وقت اس کو عروج کا وقت آئے گا تو اس کے ساتھ چل پڑے، وہ جب اس کے اوپر کوئی ایسا وقت آ گیا تو تم اب اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اور تمہیں یہ ڈر لگ گیا کوئی مجھے اس کے ساتھ نہ پہچان لے، اسلام اور میں ساتھ ساتھ نہ نظر آؤں، کہیں لوگوں کو نہ پتا چل جائے ہم مسلمان، ہاں یہ اسپینی سمجھ لیں، ہمیں یہ سمجھ لیں، یہ سمجھ لیں، کہیں نہ یہ پتا چلے کسی بھی میری اس سے کہ میں مسلمان ہوں، آج جان چھڑاتے پھر رہے اس کو، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، ایک داغ کی طرح کوئی دھبا میرے اوپر نہ لگ جائے، اس سے پہلو بچاتے پھر رہے، اپنے کپڑے سنبھل کے چل رہے، اس کا یہ میرے اوپر نہ دھبا لگے، یہ دھبا لگ رہا ہے آج، ایک وہ وقت بھی تھا جب یہ تاج تھا لوگ سروں پہ پہننا چاہتے تھے فخر کے ساتھ، اسلام کو ایسے لوگ نہیں چاہیے پھر، اسلام کو نہیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو جب اسلام کا عروج آئے تو اس کی واہ واہ ہو دنیا کے اندر، اس کا بول بالا ہو، ہاں کئی کانٹیننٹس تک اسلامی حکومت ہو، تب تو اس کے ساتھ چپکنے پہ اپنے آپ کو فخر کریں، اور جب کوئی آج یہ الگ ہی آزمائش ہے، جب کوئی اسلام کے اوپر ایسا وقت آ جائے کہ وہ دنیا میں بدنام ہو رہا ہو تو تب اسے دور ہٹتے پھریں، بجائے اس کے کہیں کہ اسلام تو میرا ایسے ہی ہے جیسے میرا بچہ ہے، ہاں میرے بچے کے اوپر کوئی حرف آئے تو میں بچے کو چھوڑ کے نہیں بھاگ جاتی، میں اس دھبے کو دھونے کی کوشش کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو اپنے سے نہیں جدا کر سکتی، اسلام کو وہ لوگ چاہیے ایسے نہیں یہ جو پھینک پھینک کے جا رہے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں خاسرت دنیا والآخرہ، خسران ہے نقصان اٹھایا انہوں اس ایسے بندے نے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. ذالک ہو الخسران المبین, یہ ہے کھلا خسارہ, کھلا خسارہ. ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں, اپنے آپ کو ضرور دیکھیں, کہیں میں تو اس آیت میں نظر نہیں آ رہے. اس کے آئینے میں خود کو دیکھیں اور سوچیں کہ آج اسلام ایک فخر کی بات ہوتی, اور جدھر مسلمان جا رہے ہوتے اور جدھر اسلام ہوتا اور جدھر اسلام کا نام لیا جاتا وہاں پہ لوگ خوشی سے ویلکم کرتے, تو کیا جو میرا اس وقت رویہ ہوتا کیا وہی آج بھی ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیوں, ظاہر ہے اس وقت تو ظاہر ہے آج تو ہم نے چھپنا ہی ہے کیونکہ اسلام کے بن. نہیں, اسلام تو وہی ہے, اسلام نہیں بدلا. ہاں مگر ہم بدل جاتے ہیں نا جب اس, ہمیں اس کا مطلب دنیا چاہیے نا, جب اس کی وجہ سے فائدے مل رہے ہیں, جب اس کا عروج ہے, جب اس کی وجہ سے واہ واہ ہو رہی ہے, تب تو ہم اس کے ساتھ لگنے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. اور جب اس کی وجہ سے کہیں ہمیں مشکل پڑ رہی ہو, کسی ایئرپورٹ پہ, کسی جگہ پہ, کسی ملک میں رہتے ہوئے, تو تب ہمیں اسلام جو ہے نا وہ ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے کوئی کلنگ کا ٹیکا ہے, نعوذ باللہ, کہ جو ہمارے لگ گیا تو پتہ نہیں ہم بدنام نہ ہو جائیں. یہ بس یہ آیتیں سبحان اللہ, چاہے 1400 سال پہلے بھی اسی طرح جیسے اس وقت زندہ تھیں, آج بھی اسی طرح زندہ ہیں یہ آیتیں قرآن کی. سبحان اللہ, واقعی یہ زندہ کتاب ہے. کیسے ہر ایک کو جو ہے نا قرآن جیسے جھنجھوڑ دیتا ہے انسان کو, آئینہ دکھا دیتا ہے, شکل دیکھ لو اپنی اس کے اندر, تم کہاں کھڑے ہو, کیا ہے تمہارے ایمان کا لیول. تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو, نقصان ہو جائے گا. جو ایک پہلے یہ جو سمجھ لیں خسارے کا لفظ, جو خسارہ ہے نا وہ اس نقصان کو کہتے ہیں جس میں انسان کی انویسٹمنٹ بھی ڈوب جائے. آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس میں منافع کا ایک آپ کو ہوتا ہے کہ منافع ملے گا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سے محفوظ رکھے, انسان کا سرمایہ بھی ڈوب جاتا ہے. خسران وہ خسارہ ہے, وہ نقصان ہے جس میں انویسٹمنٹ بھی ڈوب گئی. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں نا اس دنیا میں کہ ان سے فائدہ اٹھاتے, اس نے ان نعمتوں سے آگے کیا اپنی آخرت بنانی تھی, اس نے تو اسی زندگی کو بھی گنوا دیا, اس وقت کو گنوا دیا, اس دین اللہ نے اس کی نعمت دی تھی سب کچھ گنوا دیا اس نے, آخرت کی کیا بنانا اس نے تھا. یہ ہے اصل خسارہ, یہ اصل نقصان. مبین ہے, یہ مبین, کلیئر, واضح, اوپن ہے سب کے سامنے, یہ ایسا نہیں ہے جو آپ چھپا سکیں. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ, پکارتا ہے اس کو جو نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ کوئی فائدہ دیتا ہے. وہ لوگ پھر اسلام کو چھوڑ کے نا پھر چلے جاتے تھے انہی کے پاس, اب ہم پھر سے اپنے بتوں کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ اسلام میں ہمیں کہاں فائدہ ملا, تو اللہ کو چھوڑ کے اس کے پاس گئے جو نہ نقصان دیتا ہے اور نہ فائدہ. جو لوگ اسلام کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی اور جاتے نا, من دون اللہ, وہ بتوں کے پاس جاتے تھے. اگر کوئی آج کسی اور کے پاس بھی چلا جاتا ہے جس کے پاس وہ سمجھتا نہیں ہے, اسلام کو چھوڑو اس کے پاس جاؤ وہاں سے فائدہ ملے گا, تو نہ وہ فائدہ دیتا اور نہ نقصان دیتا. یہ ان کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں بتوں کے پاس جاتے تھے. آج بھی کئی بت ہیں نا جن کے پاس جا کے لوگ سوچتے ہیں یہاں سے فائدہ مل سکتا ہے, یہ ہمارا نقصان ہٹا سکتے ہیں, وہ تو خود اپنا بھی نہیں نہ نقصان اور نہ نفع پہ قادر ہیں. ذالک ہو الضلال البعید, یہ ہے دور کی گمراہی, یعنی کھلی گمراہی, یہ واضح ہے, دور نکل گئے گمراہی میں, سیدھا راستہ اتنی دور رہ گیا ہے ان کو نظر بھی نہیں آ رہا, اتنی دور چلے گئے گمراہی میں. گمراہ ہوتے نا گمراہ, راستہ گم کر دینا, راہ کو گم کر دینا, راہ گم کر دی, اور جب آپ ایگزٹ لے لیتے ہیں اور رونگ ایگزٹ لے کے دور نکل جاتے ہیں, اب ہائی وے بھی نہیں نظر آ رہی, اتنی دور نکل گئے یہ. یدعو لمن, پکارتا ہے البتہ اس کو جو کیا, ضرہ اقرب من نفعہ, جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. اس کا نقصان زیادہ قریب ہے. ایسے کو پکارتا ہے جن کو پکارنا نقصان دہ ہے, جن کو پکارنا نقصان دہ, اس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. اب یہاں پہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے. زمخشری کہتے ہیں یہاں بھی بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ یعنی ان کو کہا گیا من, حالانکہ من تو کہا جاتا ہے کسی, میں نے بتایا نا پرسن وغیرہ کو, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ بتوں کو ہی کہا گیا کہ من, کے ان کو نقصان زیادہ ہے ان کو پکارنے کا. اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نفع بھی ہے؟ نفع نہیں ہے, دینے والا تو اللہ ہی ہے, دینے والا تو اللہ ہے, مگر ان کا نقصان زیادہ. یعنی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں انہی سے مجھے ملا ہے, انہی کے راستے ملا ہے, یہ اسی نے میرا کام بنا کے دیا ہے, اس کو ایک تسلی سی ہو رہی ہے, اس کو ایک وہ. نہیں, دینے والا وہ رب بھی ہے. کہا گیا تو بتوں کو ہے من یہاں پہ, حالانکہ وہ زندہ کے لیے آتا ہے من, لیکن یہ بھی انہوں نے فرمایا زمخشری نے کہ یہ بھی بتوں کی بات ہو رہی ہے. دوسری انٹرپریٹیشن جو زیادہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ من کہا گیا ہے لوگوں کو, من کہا گیا ہے کیونکہ یہ لوگوں سے نفع حاصل کرنا چاہتا تھا, ان لوگوں کو راضی کرنا چاہتا تھا. جب اسلام کی طرف آیا تو لوگوں نے اس کو تانے دینا شروع کر دیا, اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اس کی وہ عزت ہی نہیں رہی جو پہلے تھی. تو اس کے بعد یہ اب لوگوں کی طرف واپس چلا گیا, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دوبارہ اپنے بتوں کو پکارنا شروع کر دیا. تو اب پکارتا ہے یدو, پکارتا ہے بتوں کو پکارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیوں بتوں کو پکارتا ہے, تاکہ ان لوگوں کو میں راضی کر سکوں. تو اس راضی کرنے کا اس کو ضرر زیادہ ہے بجائے نقصان زیادہ ہے بجائے نفع کے. سمجھ آئی؟ یہ بات سمجھ آئی؟ یعنی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ بتوں کی پوجا کی طرف واپس آ گیا. اب ان بتوں کو پکارنا ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کا نقصان زیادہ ہوگا, حالانکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں لوگوں کو راضی کر لوں گا تو یہ کیا ہوگا, یہ پتہ نہیں مجھے فائدہ دے دیں گے, میری عزتیں بحال ہو جائیں گی. جیسے کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا, اس کے بعد جب اس کو لوگوں نے بہت لان تان کیا اور اس نے دیکھا میری نہ عزت رہی ہے نہ میرا وہ مقام رہا ہے لوگوں کی نظر میں, اس نے اس کے بعد اس دین کو چھوڑا اور واپس چلا گیا. تو ایسے بھی لوگ ہوتے تھے کہ جب ان کو پتا چلتا تھا کہ اب ہمیں کچھ نہیں مل رہا یہاں پہ شہبہ بن ربیعہ, تو اس نے کہا کہ نہیں اب میں جا رہا ہوں واپس اپنے اسی بت پرستی کی طرف, یہاں سے تو مجھے نقصان پہنچا. اور اس کا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے پکارنے والے کو نا اسی کے حوالے کر دیتا ہے جس کو وہ پکارتا ہے. کرنا تو کام اللہ نہیں ہوتا, لیکن اللہ اس کے حوالے ہی چھوڑ دیتا ہے اس کو. لبئس المولى ولبئس العشير, کتنا برا مددگار اور کتنا برا ساتھی ہے جس کے ساتھ اس نے دوستی لگائی ہے اللہ کو چھوڑ کے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار, بے شک وہ لوگ جو ایمان لا کے صالح عمل کرتے ہیں ان کے لیے ہیں جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ اس کے برعکس وہ لوگ جو جمے رہتے ہیں ایمان کے اوپر, چاہے اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں, اسلام فلرش کر رہا ہو یا اسلام دنیا میں بدنام ہو رہا ہو, چاہے آسانیاں آئیں یا مشکل آئے, چاہے بیماریاں آئیں اور فقر و فاقہ آئے یا پھر صحت کے دن ہوں اور بڑی عیاشی مل جائے, کچھ بھی ہو وہ اسی راستے پہ لگے رہتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹتے. ایمان لا کے وہ اپنے ایمان کے اس دعوے کو سچا کیسے کرتے ہیں, کیسے کیسے ثبوت دیتے ہیں. اب کہنے کو تو میں بھی کہوں میرا تو ایمان ہے اللہ کے اوپر, آخرت کے اوپر, اس پہ رسول ہونے پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر پہ, یہ ساری میں ایمانیات کا دعویٰ کروں, میں کیسے پتا چلے گا میرا ایمان سچا ہے یا نہیں. وعامل الصالحات سے پھر ثبوت دیتے ہیں اپنے ایمان کا, جو زبانی باتیں نہیں, ایمان کا ثبوت صالح عمل سے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان وہ ہے جس کی جڑیں دل میں ہوتی ہیں اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے. عمل ہے پروف, پروف دو نا, अब ईमान का कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं जो आप किसी को दिखा दें, ये देखे मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि मेरे अंदर ईमान है। कैसे पता चलेगा आपके अंदर ईमान है? वो आपके अमल से पता चलेगा। लोग कहते हैं हमारा तो दिल है ना, दिल बस दिल में है ना हमारे, हमें नहीं किसी को जाहिर करने की जरूरत। बस दिल में है तो वो खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा, क्योंकि वो अमल में आएगा। तो वो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दाखिल करेगा जो ईमान ला के, और ईमान कैसा ईमान है जो मैंने बताया कि रेन और शाइन किसी तरह के हालात में, वो फसली बटेरे नहीं है कि जिस वक्त जैसे बोते हैं बादशाह या कोई भी दुनिया का सदर होता है तो उसके साथ लग जाते हैं जब तक उसके पास कुर्सी है, या कुर्सी नहीं होती तो उसको सलाम करने वाला भी कोई नहीं होता। वो इस तरह का ईमान नहीं रखते, हमेशा जमे रहते हैं और साले अमल करते हैं उनके लिए। इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, और अल्लाह करता है जो वो चाहता है। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, किसी से कंफर्म कराने की जरूरत नहीं, जो चाहे करे। मन का ना यज़ुन्नु, और जो कोई ये समझता है, अब यहां पे उसकी बात हो रही है जो ये कहे, दो इसकी इंटरप्रिटेशन है, दोनों मैं आपको बताती हूँ। जो ये कहेगा ना कि अल्लाह हमारी मदद नहीं कभी करेगा, बस अल्लाह ने हमारी मदद करनी ही नहीं है, मायूस हो चुका है, सबसे पहले उसकी बात देखते हैं। मन का ना यज़ुन्नु, जो कोई ये समझता है अल्लाह यंसुरा हो कि हरगिज नहीं मदद करेगा उसकी, किसकी यानी इस बंदे की, अल्लाह अल्लाह ताला इसकी हरगिज नहीं मदद करेगा, फिर दुनिया वाला आखिरा, दुनिया और आखिरत में, यानी वो कहता है मेरी नहीं अब मदद होनी, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस सब खत्म हो गया, अब अल्लाह ने कुछ नहीं करना, अब उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, बिल्कुल मायूस हो चुका है। अच्छा चलो नहीं अल्लाह ने करना, जाओ फिर फल यम दुद भी सबब समाई, एक रस्सी खेंच लाए आसमान से, सुम्मल यखता, फिर चाहिए कि वो काट डाले। अब ये कहा गया कि यानी ये एक यानी इशारा इस बात की तरफ कि खुदकुशी कर ले, एक आसमान से रस्सी खेंच, और आसमान की इंटरप्रिटेशन बाज जगह पे छत भी की गई है, इब्ने अब्बास ने छत भी की गई की है, यानी वो छत से एक रस्सी खींच ले और काट ले अपने आप को, यानी अपनी आप को खत्म कर ले। फल यंदर, फिर चाहिए कि देखे, फिर उसके बाद देख ले, हल युद्ध ही बनना कैदू हूँ माँ यगीस, कि ये उसकी चाल, ये उसका करना, ये उसका जो मकर है, ये उसके कुछ गुस्से को ठंडा करता है। अब उसको ये इस बात पे गुस्सा है, और इस बात के ऊपर उसको वो है कि अल्लाह ने नहीं मेरे लिए कुछ मदद करी और ना करेगा, और अब आइंदा भी नहीं कभी करेगा, तो ठीक है अगर जाओ खुदकुशी कर लो, फिर मर जाओ फिर जाके, और क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते नहीं कभी भी नहीं, अल्लाह ने कभी भी नहीं करना, करना ही नहीं उसने, मेरी मदद ही नहीं करनी, बस कुछ भी नहीं अब होना, उसने नहीं करना अब। भाई इतने वसूख से कह रहे हो तो जाओ फिर, उसके बाद अल्लाह के सिवा तो कोई और है नहीं जिसने करना, तो जाओ फिर जाओ खत्म कर लो अपने आप को। अरे एक बात कही गई कि फिर इसका हल क्या है, जाओ अपने गुस्से को इस तरह ठंडा करो, अल्लाह के ऊपर तो किसी की अथॉरिटी नहीं कि गुस्से कुछ कराए या नहीं कराए, अगर तुम इतने मायूस हो गए फिर जाओ खत्म कर लो अपने आप। अच्छा अब दूसरा इसका माना जो वो है वो ये है, यन शुरू हु की जमीर जो है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, कि अगर ये समझते हैं कि अल्लाह नहीं मदद करेगा अपने नबी की दुनिया और आखरत में, अल्लाह ने नहीं मदद करनी, यानी कुरैश मक्का दुश्मनी में लोट पोट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह कभी नहीं मदद करेगा अपने इनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया और आखिरत में, तो वो इतने शदीद इसके अंदर गुस्से के अंदर उसमें उनको चाहिए कि फिर एक रस्सी आसमान से एक रस्सी खींच लाएं, फिर उसके ऊपर चढ़े, फिर जाएं ऊपर से जाके ना वही का जो सिलसिला है वो काट दें, वो चैनल ही काट दें जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आती है, फिर देख ले कि उनकी इस चाल से उनके गुस्सा कुछ ठंडा पड़ता, हाँ उनको कुछ चैन आता है फिर इसके बाद, मैं ये तो कर नहीं सकते वो, तो फिर ठीक है तुम अल्लाह की मदद काट दो ना जाओ, जैसे जैसे पहले सूरह आले इमरान में कुल मुंह तू भी गई सी कुम, इतने अपने गुस्से के अंदर रोट पोट होने अल्लाह ताला ने फरमाया, आप इनको कहते मर जाओ फिर अपने गुस्से के अंदर ही। वकदालिक अनज़लना हुआ आयात बय्यिनात, और इसी तरह नाजिल की हमने नाजिल किया इसको खुली निशानी, खुली आयात है, क्लियर बिल्कुल साइंस है ये, बाहर आप देखा है सारी बातें कितनी वाजे हैं, कौन सी बात है जो समझ नहीं आती, उसके बाद भी कोई नहीं समझे तो अल्लाह यहदी मन युरीद, अल्लाह जिसको चाहता हिदायत देता। और अल्लाह किसको हिदायत देता? जो वाकई सीरियस होता है हिदायत लेने में, जो बात को समझता है। आयतें तो बिल्कुल वाजी हैं, इसमें से कोई लोग रास्ता पा लेते हैं, अल्लाह भी उनको रास्ता दिखाता है। और कोई लोग नहीं आना चाहते, तो आप देखें, अंधे को दिखा नहीं सकते, बहरे को सुना नहीं सकते। जो नहीं सुनना चाहता, जो अपने कान बंद कर लेना, आप नहीं सुना सकते। इन्नल्लज़ीना आमनू, अब यहां पे बेशक वो लोग जो ईमान लाए, एक ईमान वालों का ग्रुप है, और इससे आगे पांच लोगों की और बात की गई है जिनको सेपरेट किया गया ईमान वालों से। देखिये इन्नल्लज़ीना आमनू, और कहा जा सकता था वल यहूदा वन नसारा, इस तरह कहा जा सकता, मगर फिर उसके बाद सेपरेट, आमनु सेपरेट है, और उसके बाद वल्लदीना हादू वस्सौबीना वन नसारा वल मजूसा वल्लदीना अशरकू, ये दो ग्रुप्स बन गए, एक ईमान वालों का और दूसरे ग्रुप में बाकी सारे हैं, जो यहूदी हो गए, जो साबी हो गए। साबी क्या होते थे वो जमाने में? साबी कहते थे जिसने अपना दीन छोड़ दिया। कहते हैं ये भी पहले यानी यहूदियों नसारा से निकले हुए, फिर इन्होंने खुद ही अपना दीन बना लिया। बहुत सारी इसकी इंटरप्रिटेशन, साबी कौन थे? बास कहते सितारा परस थे, बेदीन लोग थे, वट एवर। साबी जो थे ना वो भी इस तरह से शिर्क करने में थे, वन नसारा, और जो नसरानी है, वल मजूस, और जो आतिश परस्त है, आग की पूजा करने वाले, वल्लदीन अशरकु, और वो जो सारे लोग जिन्होंने शिर्क किया, जिसमें मुशरिकीन सारे ही आ जाते हैं। तो अब क्या है, एक तरफ ईमान वाले और एक तरफ ये पूरा ग्रुप है जिसमें ये सारे लोग हैं। अच्छा, आपने देखा दो को वर्ब के साथ किया गया, बाकी सारों के लिए इसम है, नाउन्स है, साबीन नसारा मजूस, ये सारे नाउन्स है। लेकिन वल्लदीन हादू, जो यहूदी हो गए, वल्लदीन अशरकु, जिन्होंने शिर्क किया, ये इस वजह से ये दो लोग थे, दो ग्रुप्स थे, जो मक्का में मुशरिकीन मक्का और मदीना में आके यहूद थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मुखालफत करते थे, उनको डिस्टिंग्विश कर दिया गया। तो एक तरफ ईमान वाले हैं, दूसरा ये सारा ग्रुप है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह यफसिलु बैनहुम यौमल क़ियामती, अल्लाह है जो फैसला कर देगा इनके दरमियान क़यामत के दिन। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद, अल्लाह हर चीज पर गवाह है, खुद देख रहा है, खुद गवाह कौन होता है? शाहिदा कहते हैं हाजिर को, जो यानी खुद विटनेस हो किसी चीज का। अल्लाह ताला यानी खुद यहाँ पे हाजिर नहीं है फिजिकली, लेकिन वो अपनी सिफात के लिहाज से, वो क्योंकि बसीर है, अलीम है, कबीर है, सभी है, तो वो हर चीज पे खुद विटनेस है कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए ये यहाँ पे कहा गया कि हर ग्रुप कहता था हम ठीक है, हम ही सही है, हमारा ही दीन बिल्कुल सही दीन है। तो बता दिया गया कि ये यहाँ पे दुनिया में नहीं इस चीज का फैसला कर सकते, बल्कि ये अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा। हक तो अल्लाह ने वाजे कर दिया, आयात बय्यनात अल्लाह ने उतार दी है, इसके बाद भी अगर कोई इनकार कर रहा है तो क़यामत के दिन बिल्कुल फैसला वाजे हो जाएगा। और यफसिलु एक यहकुम होता है कि यानी उसमें भी होता है फैसला करना, एक यफसिलु है ऐसा फैसला करना, हर चीज बिल्कुल क्लियर वाजे हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई शक ना रहे, बिल्कुल अलग अलग हो जाए कौन क्या करता था। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया इन सारों की ग्रोहों की बात करके, सुभान अल्लाह, कि कभी तुमने देखा अलम तरा, कभी सोचा तुमने? कोई शिर्क कर रहा है, कोई नसरानी है, कोई मजूसी है, कोई कोई सितारों को पूछता है, कोई आग को पूछता है, कोई कुछ पूछता है। देखो तो सही, अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, सजदा कर रहे हैं उस अल्लाह को जो कोई भी आसमानों में, मलाइका हैं या पता नहीं अल्लाह की कोई और भी मखलूकात है, हमें नहीं पता, वो सब सजदा कर रहे हैं, और जो कोई भी जमीन में है, और सूरज भी सजदा कर रहा है, और चांद भी सजदा करता है, और सितारे भी सजदा करते हैं, और पहाड़ भी सजदा करते हैं, अमेजिंग, और दरख्त भी सजदा करते हैं, और जानवर भी सजदा करते हैं, और बहुत सारे इंसान भी, कसीरु मिनन्नास, वो भी सजदा करते हैं। नास की तो अभी बात हम करते हैं, क्योंकि नास में से और भी हैं जो नहीं करते, वकसीरुन हक्का अलैहिल अज़ाब, और बहुत सारे हैं जो अल्लाह को छोड़ के और उनके आगे झुकते हैं। शम्स या कमर या नुजूम, चलो शम्स और कमर तो चलो एक ही है, गो के आप साइंस कहती है और भी सूरज है, बट जो हमारा सूरज है एक ही है इस सोलर सिस्टम का, चांद हमारी अर्थ का एक ही है, सितारे बहुत सारे हैं। सितारों का नहीं कहा गया कि कसीरुम मिन नुजूम जो है जो वो सजदा करते हैं, वह कसीरुन हक्का अलैहिम अज़ाब, ये भी नहीं कहा गया कि उनके ऊपर अजाब का सख्त हो गया क्योंकि कुछ सितारे सजदा करते हैं कुछ नहीं, यहाँ पहाड़ हैं कुछ सजदा करते हैं कुछ नहीं। नहीं, पहाड़ भी जो हैं सारे के सारे ही सजदा करते हैं, दरख्त भी सारे के सारे ही सजदा करते हैं, जानवर भी सारे के सारे ही सजदा करते हैं। सितारे आज वो कहते हैं ट्रिलियन एंड ट्रिलियंस हैं सितारे इस कायनात में, सारे के सारे सजदा करते हैं। ये सब हैं जो सजदे में शामिल हैं, सब हैं जो अल्लाह के आगे झुके हुए हैं, सुभान अल्लाह। और इसके अंदर आप अमेजिंग बात देखें कि सिर्फ ये नहीं है, एक तो सजदा है ना जैसे यानी सजदा इताअत जिसको करेंगे, इताअत का सजदा वो सजदा है जिसमें तो आ गया कि सब जितनी भी ये इनकी सारी चीजें ये बताई गई हैं, ये सारे के सारे अल्लाह की इताअत करते हैं और अल्लाह की इताअत में ऐसे हैं कि एक पल के लिए भी ये अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते कि सूरज एक पल के लिए भी कहे मैंने नहीं आज निकलना, मैंने कल निकलना है, मैंने आज देर से, आज मैं बड़ा थक गया हूं, मैं कल आऊंगा, यानी एक पल के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं है इनके अंदर, इताअत है। ये एक सजदा इताअत होता है, ठीक है, यानी अल्लाह ताला की इताअत के अंदर बिछ जाना, झुक जाना, ठीक है। तो एक ये सजदा हो गया। एक दूसरा सजदा भी होता है जैसे कि हम फिजिकली सजदा करते हैं, जिस सजदा इबादत जिसको कह ले, ठीक है, वो सजदा भी है, वो सजदा भी सब के सब करते हैं, सब के सब, सुभान अल्लाह। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में आता है कि फरमाया ये बुखारी और मुस्लिम में कि अबू जर से फरमाते हैं कि जानते हो कि ये सूरज कहाँ जाता है, तो उन्होंने जवाब दिया अल्लाह को पता है और उसके नबी को, अल्लाह और उसको रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया ये अर्श तले जाके अल्लाह को सजदा करता है, फिर उसे इजाजत मांगता है कि अल्लाह मैं निकलूं कि नहीं निकलूं, तो जब इजाजत मिलती है ना तो फिर ये निकलता है, और वो वक्त आ रहा है कि उससे एक दिन कहा जाएगा जहां से आया वहीं वापस चला जा, तो ये फिर मगरिब से ही निकलेगा, सुभान अल्लाह। अब आप कहेंगे वो जी हमने तो साइंस में ये पढ़ा है तो उसमें ये पढ़ा है, अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया हक है बात वो, सच्ची है बात वो, अब साइंस के थ्रू हमें क्या समझ आते ना, हम तो ये भी नहीं फिर सोचेंगे कि कभी ये बोल भी सकते हैं या ये कोई अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं, इसको भी आप साइंस से फिर कहां प्रूव करेंगे, तो वो तो चीजें को छोड़ दें, बस इस बात को समझ लें कि सूरज भी अल्लाह की इजाजत के साथ एवरी डे निकलता है। इतना बड़ा सूरज है, लाखों गुना बड़ा जमीन से, तब भी उसका ये हाल है, और जमीन के ऊपर हम खुद खड़े हों तो नुक्ते से ज्यादा हम खुद नहीं नजर आएंगे, और ज्यादा ऊपर चले जाओ तो नजर ही नहीं आएंगे, इतने छोटे हैं हम, और जमीन तो छोटे से गेंद की तरह, उसके मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है। वो सूरज और इससे भी बड़े बड़े सितारे हैं इस कायनात के अंदर, सब झुके हुए हैं। मजाल है कि वो कोई जरा सी बात इधर उधर से कर दे या कोई जरा सी नाफरमानी करें या जरा सी कोई अल्लाह की इताअत के अंदर कमी बेशी कर दे, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और पहाड़ दरख्त, पहाड़ों का कैसे साया है कि पहाड़ भी जो सजदा है वो कैसे है कि साये की सूरत में, कि पहाड़ भी जैसे उसका साया झुकता है और उठता है जी, बिल्कुल इसकी तरह के जैसे कि सजदे में पड़ा हुआ है और उठ रहा है, सूरज भी नहीं आप देखते, ऐसे लग रहा है कि जैसे सूरज सुबह को निकल रहा है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सजदे में पड़ा हुआ था सारी रात और उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, और पूरी दोपहर हो जाती तो जैसे उठ के बिल्कुल पूरा खड़ा हो गया एक इंसान है ना, उसके बाद फिर झुकने शुरू हो जाता है मगरिब की तरफ, जैसे कि कोई रुकू में जा रहा है, रुकू में जा रहा है, रुकू में जा रहा है, फिर मगरिब हो जाती तो बिल्कुल सजदे में चला गया, पूरी पोजीशन वैसी है, उठा और फिर अब खड़ा हो गया और उसके बाद फिर चला गया। और कुरान कहता है कि ये सारे अल्लाह के सामने تسبیح کرتے ہیں، اس کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، لیکن تم ان کی نہ تسبیح کو جانتے ہو نہ ان کی نمازوں کو جانتے ہو، اور سب کو اپنی اپنی نمازوں کا پتہ ہے کہ اس کی نماز کیا ہے. بلکہ اور پہاڑوں کا تو یہ بھی ہے، یہ تو اس چیز کو بھی پسند کرتے ہیں، ایک پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے آج تمہارے اوپر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی گزرا ہے؟ وہ اسے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی گزرے. دیکھیں اتنی زیادہ یعنی ان کے اندر ان چیزوں میں شعور ہے. دیکھیں نہیں وہ پتھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا. نہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیڈ چیزیں ہیں، ان کو کیا پتا، یہ تسبیح بھی کرتی ہیں، یہ نماز بھی پڑھتی ہیں، اور یہاں سے پتا چل گیا کہ یہ سجدے بھی کرتی ہیں، سجدے بھی کرتی ہیں. اللہ اکبر. اور چوپائے بھی سجدہ کرتے ہیں، ان سر جھکا کے کھاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں جب انسان سجدے کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی ہے یہ، تو پھر وہ مخلوقات کے اگینسٹ، جس پہ پوری کائنات ایک طرف چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں نا جدھر سارے چل رہے ہیں سب یہی کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گی، تو اگر سب کے پیچھے ہی چلنا ہے نا تو یہ دیکھ لیں کہ سب کیا کر رہے ہیں، سارے ہی سجدہ کر رہے ہیں، اطاعت کا سجدہ بھی کر رہے ہیں اور عبادت کا بھی کر رہے ہیں، تو پھر ان کے پیچھے چلیں نا اگر آپ نے کثرت ہی دیکھ کے چلنا ہے. سورج چاند ستارے پہاڑ درخت جانور سب ایک طرف چل رہے ہیں، ہم اپوزٹ طرف چل رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں درختوں کا سجدہ اور ان کا، اور ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ یہ جیسے ایک درخت ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے آپ سترا سا رکھتے ہیں نا، تو جب میں سجدے میں گیا تو وہ درخت بھی سجدے میں گیا، اور میں نے سنا وہ اپنے سجدے میں پڑھ رہا ہے کہ اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر و ثواب لکھ لے، اور میرے گناہ معاف کر دے، اور میرے لیے اسے آخرت کا ذخیرہ بنا دے، اور اسے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول کیا. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت پڑھی، پھر سجدہ کیا، اور یہی دعا آپ نے بھی پھر اپنے اس سجدے میں پڑھی جس کو میں سن رہا تھا، جیسے جو اس آدمی نے اپنے خواب میں بتائی تھی کہ میں جو خواب میں ہی آیا. سبحان اللہ. تو یہ یعنی یہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں اور ان میں بھی شعور ہے. اور پھر جانوروں کا بھی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانور کی پیٹھ کو اپنا ممبر نہ بنا لیا کرو، کہ بہت سی سواریاں اپنے سوار سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہوتی ہیں. یعنی انسان تو شاید اللہ کا ذکر کرنا یاد رکھے کہ نہیں رکھے سواری پہ بیٹھ کے، مگر بہت سے جانور ہیں نا، وہ انسان جو اس کا سوار ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر اور لیکن جب ساری چیزیں سب کی سب کرتی ہیں، ان میں سے کسی چیز نے بھی ایک نے نہیں کہا کہ میں نے نہیں کرنا، لیکن جو انسانوں کی بات آئی نا، تو انسانوں میں البتہ دو گروپ ہے. ایک گروپ وہ ہے کہ جو اللہ کے آگے سجدہ کرتا، اور ایک کے حق کے اندر عذاب لکھ دیا گیا، اس کے لیے عذاب چسپاں ہو گیا، اس کے لیے ثابت ہو گیا، کنفرمڈ ہے اس کے لیے عذاب. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے سجدے سے انکار کرنے والا ہے، اس کا سارا جسم اللہ کی اطاعت کرتا ہے، سارا جسم آپ دیکھیں سانس ہیں پھیپھڑی ہیں سب اللہ کے کن کہنے کے اوپر چل رہے ہیں، سب اطاعت کر رہے ہیں، لیکن وہ خود اللہ کے آگے نہ سجدہ عبادت کرتا ہے نہ سجدہ اطاعت کرتا ہے، اس کے لیے یہ عذاب ہے. اسی طرح کثیر من الناس جو سجدہ عبادت تو کرتے ہیں، کثیر من الناس ایسے بھی ہیں جو اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتے ہیں، جھکے ہوئے رہتے ہیں اللہ کے آگے، سبمٹ کر دیتے ہیں، وہ سجدہ اطاعت بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا یہ سجدہ اطاعت ہے. ٹھیک ہے، اور سجدہ ہی اظہار ہے انسان کا کہ انسان اللہ کے آگے بس اپنے آپ کو نیچا کر دیتا ہے. دیکھیں سجدہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی پیاری چیز ہے، اس لیے کہ سجدے سے زیادہ نیچی کوئی بھی پوزیشن نہیں ہے، اس سے کوئی نیچے نہیں ہے پوزیشن. استغفر اللہ ربی. ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بعض شاعریوں کے اندر شاعروں نے محبوب کے لیے سجدے تک کے لفظ استعمال کیے ہیں، وہ وجہ کیا ہے کہ اس سے زیادہ نیچے کوئی جھک نہیں سکتا. دیکھو خود رب ہے صرف اس لائق کہ اس کے آگے اپنی جبیں جھکائی جائے، اپنا ماتھا ٹیکا جائے. یہ انسانوں کے آگے ٹیک دیتے ہیں، کبھی بتوں کے آگے، کبھی کسی کے آگے. تو جب انسان سجدہ کرتا ہے نا، تو اس کا جو موسٹ ریسپیکٹفل باڈی پارٹ ہے، جو سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہے اس کی پورے جسم میں، وہ اس کا چہرہ ہے. وہ اس چہرے کو زمین میں رول دیتا ہے، مٹی میں رول دیتا ہے، اور اللہ کو دکھاتا ہے کہ اللہ تیرے آگے میں نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا. اللہ میں نے اپنے آپ کو دیکھ تیرے آگے کیسے بچھا دیا، کیسے میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھ رہا ہوں. اللہ جتنا میں نیچے جا سکتا تھا، اب اس سے نیچے تو نہیں جا سکتا، جتنا میں نیچے جا سکتا تھا اللہ میں نے اتنا اپنے آپ کو نیچا کر دیا، تیرے آگے نیچے کر دیا. یہ ہے یہ اظہار. اور آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے سب سے زیادہ انسان اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے. تو جانتے ہیں کس پوزیشن میں؟ اس سجدے کی پوزیشن میں. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. جب وہ سجدہ کرتا ہے تو گویا اس نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا. سبحان اللہ، اتنا وہ قریب ہوتا ہے اللہ سے کہ اس نے اپنا یہ عزت اور اکرام والا چہرہ جھکا دیا، بچھا دیا. اور صرف جھکایا نہیں ہے، زمین پہ لگا دیا، مٹی میں لگا دیا. سبحان اللہ. اب اس کے اندر انسان اپنی سبمیشن بھی شو کرتا ہے. انسان یہ شو کرتا ہے کہ میں نے، یعنی اللہ میرے اندر کوئی اکڑ نہیں ہے، اللہ میں اس چیز کو اپنی کوئی بڑائی نہیں سمجھتا، میں کوئی بڑا پن نہیں دکھاتا. اللہ دیکھ میں نے اپنے آپ کو کیسے جھکا دیا، اللہ میں نے اپنے آپ کو رکھ دیا زمین پہ، اپنے چہرے کو رکھ دیا تیری خاطر زمین پہ. ورنہ انسان کھڑا ہوتا ہے سیدھی پوزیشن کے اندر، اس کا وہ کیوں چاہے گا کہ وہ اپنا چہرے کو زمین کے اوپر رولے، مٹی میں رولے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِم، جس کو رسوا کر دے اللہ تو اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. جو اللہ کے سامنے اکڑتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اور نہیں سجدہ کرتا، دیکھو قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائے گا تو کئی لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ظاہر اپنے آپ کو فرمائے گا تو لوگ جو ہوں گے اللہ کے آگے سجدے میں پڑے جائیں گے، جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے. لیکن جو دنیا میں سجدے سے انکار کرتا ہے، اس کی کمر بھی تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکے گا اس دن. سب میں نمایاں ہوگا کہ یہ وہ ذلیل لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اللہ کے آگے نہیں جھکے تھے. کتنی ایک شرم کی بات ہوگی وہاں پہ. یہ رسوائی ہے، یہ تو عزت اس کے اندر ہے، آنر اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے سامنے. اس میں اس کی عزت ہے، اس میں اس کا اکرام ہے. دیکھیں آپ، دیکھیں انبیاء، اولیاء اللہ، فرشتے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا رہے ہیں. تو تمہاری تو اس میں تو عزت کی بات ہے نا. اب اس کے اندر خود کو آر سمجھنا یا اپنی بڑائی سمجھنا یا نماز نہ پڑھنا، اللہ کو سجدہ نہ کرنا اور اس کے اندر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ تو اہانت ہے انسان کی. یہی سب سے بڑی انسان کی عزت ہے. انسان یہ کہے کہ اللہ مجھے میں کچھ چیز نہیں ہوں، مگر جس رب کو میں سجدہ کر رہا ہوں وہ رب بہت بلند ہے، وہ رب بہت بڑا ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ اس کے بعد تلاوت سنیں گے اور ساتھ ہی سجدہ کر لیں گے. دو دو تین تین دفعہ، چار دفعہ بھی آپ سن لیں، آپ پڑھ کے سنائیں، آپ حفظ کریں اس کو، تو ایک دفعہ ہی سجدہ کرنا، سجدہ تلاوت کرنا یعنی آپ کے لیے واجب ہے. ہر دفعہ ضروری نہیں کہ آپ ہر دفعہ سنیں، تو ہر دفعہ ہی کریں، دس دفعہ سنیں، دس دفعہ کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سجدہ تلاوت ہوا ہے کہ جب انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کی تلاوت، آیت کو تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ جا کے تو روتا ہے اور افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کر لیا، وہ جنتی ہو گیا، میں نے انکار کر دیا، میں جہنمی ہو گیا. تو سجدہ کرنا نا اتنی پیاری چیز ہے. اسی طرح ہم سجدہ شکر بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرنا بہت اچھا ہے. آپ ویسے بھی سجدہ شکر کر سکتے جو کسی وقت بھی، कोई इसके अंदर ये नहीं है कि हाँ हर नमाज के बाद ही मैंने जरूरी है कि सज्दा शुक्र, इसको भी एक वो नहीं बना लें और लोगों को ना कहते रहें कि हर नमाज के बाद सज्दा शुक्र किया करो, और इस तरह फिर ये बिदत बन जाती है कि जिसका दिल चाहे कर ले या मर्जी करे। फिर इसी तरह आपको कोई खुशी मिले तो तब भी अल्लाह के आगे झुक जाया करें, फौरन सज्दे में पड़ जाएं, ये भी एक, ये कोई बिदत नहीं है, ये भी एक तरीका रहा है। और फिर इसी तरह वैसे भी दुआ करनी हो तो तब भी इंसान नमाज के अलावा भी वैसे ही सजदे में जाके दुआएं कर सकता है। उसमें कोई जरूरी नहीं कि आप नमाज ही पढ़े तो फिर ही आपने सजदा करना है, उसके अलावा नहीं कर सकते ना, वैसे भी सजदे में चलना है। बस ये सोचे कि इस वक्त मैं सजदे में हूं, मैं अपने रब से बहुत करीब हूं, इस वक्त मैंने अपना सर उसके कदमों में रखा है, इस चीज को महसूस करें। और जब हम नमाज में भी सजदा करें या वैसे भी, तो फिर अपना ध्यान अल्लाह की तरफ लगाएं, इसलिए क्योंकि देखें जब अगर मैं सजदा कर रही हूँ और अल्लाह मेरे से इतना करीब है, मैंने उसके कदमों में अपना सर रखा हुआ है और मेरा ध्यान कहीं और हो और मैं दुनिया के कई मामलों को सोच रही हूँ, तो कितनी एक बुरी बात है। आपसे कोई बात करे और आप मुंह दूसरी तरफ कर दें तो कितनी डिसरिस्पेक्ट होती है ना, डिसरिस्पेक्ट समझी जाती है ना। और आप अपना सर उसके कदमों में रखे हुए और सोच रहे हैं कि अब मैंने क्या पकाना है और क्या खाना है और क्या करना है। अच्छा, फिर अब आगे की जो तीन चार आयतें हैं, ये सारी आयतें 22 तक, 19 से 22 तक, एक ही बात के ऊपर है। ये इसके बारे में जो यहाँ पे दो ग्रुप्स की बात की गई और फिर उनका अंजाम बताया गया, एक ग्रुप का अंजाम आयत नंबर 22 तक है, दूसरे ग्रुप का अंजाम फिर आगे हम अगली दफा पढ़ेंगे आयत 23 में है। हादानी खसमानी, ये दो ग्रोह हैं, इख्तसमू फिर रब्बिहिम, जिन्होंने झगड़ा किया अपने रब के बारे में। अभी तक हम बात करते आ रहे हैं ना कि लोगों में से कोई ऐसा है जो अपने रब के बारे में झगड़ता है, अपने अल्लाह के बारे में झगड़ता है, उसको इल्म भी नहीं है। तो ये दो ग्रोह कौन है, इसकी दो तीन तफसीरें की गई हैं। एक तो जो अमूमी एक तफसीर है कि ईमान वाले और काफिर, ये जो पहले आयत नंबर 17 में लिख लें इन बातों को, आपको भूल जाएंगे। आयत नंबर 17 में दो ग्रुप्स की बात हुई ना, कहने को ये 5-6 लोगों का ग्रुप्स का तस्करा है, लेकिन हैं दो ही, क्योंकि एक इन्नलजीना आमन हुए और बाकी 5 ऑपोजिट ग्रुप है, सारे एक ही ग्रुप में है। तो ये दो ग्रुप बनते हैं, ठीक है। तो इनकी भी बात हो गई, एक ईमान वाले और एक तरफ ये सारे। और तीसरा इसका ये हो गया कि ये वाकया इस बारे में है जो बदर में जब मुसलमान उतरे थे और मुबारजत हुई थी, तो आपने जैसे इसका वाकया पढ़ा हुआ कि उस वक्त एक तरफ तो हजरत अली और हजरत हमजा और हजरत उबैदा थे और दूसरी तरफ काफरों की तरफ से आए थे लोग लड़ने के लिए। तो उस वक्त ये जो दो ग्रुप्स थे जिनका आपस के अंदर मुबारजत हुई थी, ये उनका जिक्र आ रहा है। इसका आप जिक्र पढ़ भी सकते हैं, उसमें है मारफल कुरान में भी है, उतबा बिन रबिया और उसका बेटा वलीद और उसका भाई शैबा, ये सारे काफरों की तरफ से ये तीनों आए थे और ये मारे गए थे। तो ये आयत का नजूल जो है ये इन मुबारजीन बदर के बारे में आया, ये आयत उसमें शान नजूल इसका। लेकिन जाहिर है मैंने आपको बताया कि एक मखसूस भी होता है और एक उमूमी भी होता है आयत का एक माना। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आम मोमिनीन के मुकाबले में ये जो ग्रो काफरों का है, ये भी झगड़ा इनका भी आपस के अंदर, दो झगड़ने वाले हैं, ये दो हैं ग्रो जिन्होंने झगड़ा किया अपने रब के बारे में। मोमिनों ने कहा उसको वाहिद और अहद और उसको कहा ला शरीक लहु और उसको कहा ला कुल्ली शैइन कदीर और उन्होंने कहा क़यामत पे ईमान और सब कुछ, और दूसरों ने उनके साथ झगड़ा किया और बहसें की और वो की। अब क्या होगा, अब दोनों ग्रुप्स की बात बता दी गई। पहला जो एक ग्रुप है फल्लतीना कफर, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इस ग्रुप में से जो लड़ते हैं अल्लाह के बारे में और ऐसी बहसें करते हैं, हाय कुत्तियत लहुम थियाबुम मिनन नार, उनके लिए काटे जा चुके हैं आग के कपड़े, आग के कपड़े इन लोगों के लिए काटे जा चुके हैं। यानी ये अभी गए नहीं वहां पे, पहले ही उनके लिए उनके कपड़े काट के तैयार हो चुके हैं। और कुत्तियत ना, कता नहीं है, कुत्तयात। जब आपको मैंने बताया ना, जैसे जैसे वर्ड के बोलने के अंदर एग्जेजुरेशन जैसे आपको महसूस हो रही होगी, क्योंकि जैसे शिद्दत आती है ना इसके बोल में, कुत्तयात, ये एक अलग बाब से आ रहा है। कता नहीं कहा गया, काट दिए गए, कुत्तयात, यानी अब एग्जेजुरेशन। एग्जेजुरेशन किस चीज की ताकीद, किस बात की, ताकीद नहीं, सॉरी, मुबालगा, किस बात का, क्या एग्जेजुरेशन है, यानी बिल्कुल नाप के मुताबिक, बिल्कुल जैसे कस्टम मेड होता है, बिल्कुल फिट किसी को आना, इस तरह से काटे जा चुके हैं उनके लिए कपड़े, स्पेसिफिक, हर हर एक के लिए खास, इसी ने पहनना है। जैसे कहते ना, आप एक तो रेडीमेड जाके कपड़ा ले लेते हैं किसी साइज, अल्लाह ताला ने वहां पे कपड़े इनके लिए तैयार कर रखे हैं, वो आग के बने हुए और इनके लिए एग्जैक्ट फिट के हैं। अल्लाह अकबर। युसब्बु मिन फौके रुउसिहिमुल हमीम, जब ये कपड़े उनको उस दिन पहना दिए जाएंगे, उनके लिए तैयार तो हो चुके हैं उस दिन, इनको बिल्कुल इनकी फिटिंग के मुताबिक इनको पहना दिए जाएंगे, इनको तैयार कर दिया जाएगा, बिल्कुल रेडी होंगे। जब रेडी हो जाते हैं कहीं जाने के लिए, कोई कपड़े पहना दिए जाते हैं, तो फिर इंसान को कहीं, मसलन कहीं पे भी जाता है वो रेडी होके, तो क्या होता है फिर, आप कहीं मेहमान बन के जाते हैं, कहीं एंटर होते हैं, तो क्या होता है फिर, एक इस्तकबाल होता है ना। इस्तकबाल में आपने देखा होगा आजकल लोग फिर खड़े हो जाते हैं, फिर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, फिर कोई मतलब वेलकम करते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, कुछ होते हैं। ये अल्लाह ताला माफ फरमाए, जो ऐसे लोग हैं, जब इनको ये कपड़े पहना के रेडी कर दिया जाएगा, तैयार कर दिया जाएगा, उसके बाद इनको भी, चूंकि ये जहन्नुम के मेहमान हैं, तो इनको वहां ले जाया जाएगा रेडी करके, और इनका इस्तकबाल कैसे होगा, फूलों की पत्तियों से नहीं, पोर किया जाएगा, डाला जाएगा, मिन फौ की रूह से, जैसे उनके सरों के ऊपर पत्तियां निछावर की जाती है ना, ऐसे सरों पे फेंकते हैं, इनके सरों पे क्या फेंका जा रहा है, ऐसा पानी जो खौलता हुआ है, जो खुद आग बन चुका है, वो पानी इनके ऊपर डाला जाएगा, मिन फौ की है, मिन ऊपर से, बिल्कुल जैसे करके, राइट ऑन टॉप ऑफ देम, बिल्कुल ऊपर से, मिन फौक रुउसिहिम, इनके बिल्कुल ऊपर से, यानी इतने करीब से डाला जाएगा कि जैसे ऐसे कोई, जैसे कोई ग्लास पकड़ के सर के ऊपर ले जाके डाल दे ना, इस तरह इनके ऊपर डाला जाएगा, इनके सरों के ऊपर खौलता हुआ पानी। ये है इनका इस्तकबाल जो जहन्नुम के अंदर हो रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। और ये भी कहा जाता है कि इनके जो लिबास होंगे तांबे की सूरत में होंगे, जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, आपको पता है ना कॉपर, फिर ऊपर से गर्म उबलता हुआ पानी डाला जाएगा, तो फिर क्या हाल होगा सोच, जिससे आंतें और चर्बी घुल जाएगी और खाल भी झुलस जाएगी। इसीलिए कहा गया, युसहारु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, हाल ये होगा कि जब पानी ये डाला जाएगा तो इसका उनकी हालत क्या होगी, कि गला देगा इससे इनके पेटों को और जो खाले हैं। अब युसहर क्या चीज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमीम जब इनके सरों पे उंडेला जाएगा और ये पानी जब उनके अंदर दाखिल होगा, हत्ता कि उनके पेट तक पहुंचेगा, तो जो पेट में होगा उसको भी बिल्कुल पिघला देगा, इतना सख्त गर्म पानी होगा, जो उनकी आंतें होंगी, जो होंगी, सब पिघल जाएंगी, और ये पानी उनके पैरों तक पहुंच जाएगा, और आंतें जो है ना वो भी पिघल के आके निकल जाएंगी, पेट से निकल के पैरों पे गिर पड़ेंगी, फिर जैसे थे वैसे दोबारा हो जाएंगे। ये है युसहरु, इतना गला देगा उनको कि वो जो आंतें सारी लिक्विफाई होके आ जाएंगी, इतना गला देगा। आप देखते हैं प्रेशर कुकर में कभी आप ज्यादा देर के लिए कोश को पिघला डालें, तो वो बिल्कुल रेशा रेशा हो जाता है, और बिल्कुल कई दफा बिल्कुल ही मलीदा बन जाता है, तो इस इतना वो गर्म होगा कि इस सिर्फ एक दफा के डालने से ये हालत हो जाएगी उनके जो पेटों में और जो उनकी खाले हैं उसके ऊपर। अल्लाह अकबर, दुनिया में तो पानी सिर्फ उतना ही गर्म होता है ना जितनी उसके नीचे आग जलाई जाती है। एक सर्टन टेम्परेचर होता है, उसके बाद तो वो इवेपोरेट हो जाता है। 100 डिग्रीज होता है ना, उसके ऊपर वो इवेपोरेट हो जाता है। अब खुद बताएं कि ये कैसा पानी है जो कि इवेपोरेट नहीं होगा। वल्लाहु आलम वो पानी H2O है या कोई पत्थर पिघलाए हुए हैं या क्या, वल्लाहु आलम के वो क्या है कि वो पानी इवेपोरेट नहीं होता। इसलिए यहाँ पे तो जितनी आग है या आग का क्या टेम्परेचर है उस मुताबिक ही पानी गर्म होता है। जो आग ही 70 गुना ज्यादा गर्म है उसके आगे तो ये पानी वैसे ही उड़ जाए। वो आग इतनी गर्म है उसके ऊपर वो पानी कितना उबलता हुआ गर्म होगा, ये अंदाजा करें। जब हम उस आग का नहीं अंदाजा कर सकते, उस पानी का भी नहीं कर सकते कि उसका टेम्परेचर क्या होगा। हाँ, इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि वो पानी इस कदर गर्म होगा कि उसका एक कतरा जमीन के किसी पहाड़ पे गिर जाए तो सारे पहाड़ को पिघला दे, पिघला दे। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। अब्दुल्ला बिन सरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ता इस डोलचे को जिस डोल में होगा उसके कड़ों से थाम के लाएगा और इसके मुंह में डालना चाहेगा, ये घबरा के मुंह फेर लेगा तो फरिश्ता इसके माथे पे लोहे का हथौड़ा मारेगा जिससे इसका सर फट जाएगा। वहीं से उस गर्म पानी को, आग जैसे पानी को डालेगा जो सीधे पेट में पहुंचेगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, तो ऐसे इनको पानी दिया जाएगा। اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار। जब कभी गलती से भी हाथ ना जल जाए चूल्हे पे या उस किस चीज से गरम स्टीम है या उससे, तो मुझे बहुत रोना आता है, बहुत ज्यादा रोती हूँ मैं। रोती क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे कोई तकलीफ हो रही, तकलीफ तो चाहे जो भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसा नहीं जला कि इतनी कोई ऐसी तकलीफ हो रही हो। रोती इसलिए हूँ कि अल्लाह ये इतना गर्म है और 1 सेकंड में मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। क़यामत के दिन वो क्या अजाब होगा जिसके अंदर से इंसान ना निकल सकेगा, ना उससे अपनी जान बचा सकेगा, ना उसे हाथ हटा सकेगा, वो कैसा अजाब होगा। और फिर मुझे ये भी होता है कि मुझे उस वक्त ना खुशी होती है, खुशी इस बात की कि अल्लाह तूने मुझे ये दिखा के मुझे ये रियलाइज कराया कि तेरे अजाब कैसे होंगे। अगर ये इस वक्त ना मैं रियलाइज करती, ये ना जलता और ना रियलाइज करती, तो कभी इतनी शिद्दत से दुआ ना मांगती। कुछ उस वक्त दुआ दिल से निकलती है और जितनी देर जलन होती रहती है जो दुआ निकलती है ना, वो शायद आम दिनों में मैं मांग ही नहीं सकती। जो उस वक्त दिल से आ रहा होता है कि अल्लाह बचा लेना, और वो जो रहते कि सोच इंसान अपने आप के अंदर खुद भी सोचता है, सोचो अगर ये मुसलसल जारी रहे तो क्या हो, तब क्या हो? वाला हूँ। और उनके लिए वहां मकाम याऊ, उनके लिए गुर्ज होंगे, कोड़े होंगे। मैंने कहा ना कामा कहते हैं ऐसी चीज को जिससे मारा जाए ना तो इंसान आजिज हो जाए बिल्कुल। तो यानी आपने देखा उसको भी कमा कहते, जो मकाम कहते, जो ये आपने कभी फिल्मों वगैरह में देखा होगा ऐसे हाथ में उन्होंने लंबे लंबे ऐसे गुर से पकड़े होते हैं, आगे उनके बॉल लगा होता है और उसके अंदर से कीले कीले सी कांटे से निकले होते हैं, वो ऐसे मारते हैं तो वो चीज उड़ के उधर जाती है। वो होंगे उनके हाथों में इन फरिश्तों के मिन हदीद, लोहे के बने हुए ये लोहे कैसे गुर्ज होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, कुल्लमा अरादु अन यखरुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फीहा। जब कभी वो चाहेंगे कि वो उसमें से निकलें गम की वजह से, यानी इतना गम होगा कि जब वो कहते होंगे ना कि अब नहीं बर्दाश्त होता, अब नहीं बर्दाश्त होता, हम यहाँ से निकलें, अब नहीं हम जी सकते, अब नहीं हमसे टॉलरेट होता, इनाफ इनाफ नाउ, अब चाहेंगे कि अब बाहर निकलें यहाँ से। ऐसे लगता है जैसे किसी देग में या किसी आग के ऊपर लोगों को डाला हुआ, उसके अंदर से अब वो निकलना चाहते हैं। जब इरादा करेंगे बस मुझे बाहर जाना है, बस मुझे निकलना है, दोबारा उनको अंदर धक्का दे दिया जाएगा। कहा जाएगा वजूकु अज़ाब अल-हरीक, चखो अब इस अजाब को, चखो टेस्ट करो ये अजाब जलने का। ये क्यों अजाब दिया जा रहा है? जब इनके पास पैगाम पहुंचता था ना, ये बहसें करते थे, ये बगैर इल्म के हुज्जते देते थे, ये बगैर इल्म के अल्लाह के बारे में झगड़ते थे। इनको समझाया गया, इनको बताया गया, लेकिन इन्होंने नहीं मान के दी। ये वो लोग हैं, इनका ये अंजाम हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन हथौड़ों में से जिनसे दो जखियों को मारा जाएगा, अगर एक जमीन पे लाके रख दिया जाए तो तमाम इंसान और जिन्नात मिलके भी उसको उठा नहीं सकते, वो इतना वजनी है। और अगर वो किसी बड़े पहाड़ पे मार दिया जाए, सोचे केटू पे, सोचे माउंट एवरेस्ट पे मार दिया जाए, वो एक बस एक दफा और एक उसका वो जो हथौड़ा है, तो वो रेजा रेजा हो जाए और जहन्नमी भी उससे रेजा रेजा हो जाएंगे, मगर फिर जैसे थे वैसे फिर वैसे ही हो जाएंगे। और अगर असाक जो जो जहन्नमियों की गिजा है, जो पीप है, पास है, जो जख्मों से निकली, उसका एक डोल दुनिया में बहा दिया जाए, तमाम दुनिया बदबू के मारे हलाक हो जाएगी, कोई सरवाइव नहीं कर सकेगा। अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जब कभी वहां से निकलना चाहेंगे वहीं वापस लौटा दिया जाएंगे। उससे कोई खलासी नहीं है, खलासी नहीं है कि बस खत्म हो जाए, खत्म नहीं है, खत्म नहीं है, वहां पे खात्मा है ही नहीं, ना मौत है, ला यमूतु फीहा वला यहया। और वो जिंदगी भी क्या है, मौत से भी बदतर, ना मौत है ना जिंदगी। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि जहन्नम की आग के शोले इतने ऊंचे होंगे जैसे कोड़े होते हैं, कोड़े, और जैसे कोड़ा पड़ता है ना किसी के जिस्म पे, इस तरह ये आग के शोले ऊपर से आके जोर से उसके ऊपर पड़ेंगे। और जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा कि जब किसी को बहुत जोर से कोई चीज मारी जाए तो वो उड़ के हवा में थोड़ा सा उड़ता है, ऐसे ऊपर होता है ना, बाउंस होता है ना थोड़ा सा, तो जब वो इतनी जोर से, वो जो आग का शोला ही कोड़ा बना हुआ है, वो इतनी जोर से उनके ऊपर पड़ेगा तो वो उड़ के ऊपर को जाएंगे, और इतना ऊपर उड़ जाएंगे, इतना ऊपर, सोचे कितनी जोर से पड़ेगा कि वो इतना ऊपर उड़ जाएंगे कि जहन्नम की, यानी जैसे बाहर तक जैसे आ जाते, ऊपर तक आ जाएंगे। और जहन्नम की गहराई कितनी है, आपको पता है कि जहन्नम की गहराई कितनी है? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा, मुस्लिम में ये रिवायत है कि सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे तो किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी, आपने फरमाया क्या तुम जानते हो ये क्या है? तो सहाबा ने कहा अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया ये एक पत्थर है जिसको अल्लाह ने दोजख में 70 साल पहले, 70 ईयर्स पहले फेंका था, अब वो जहन्नुम की तह पे पहुंचा है और मुसलसल ट्रेवल कर रहा है, वो पत्थर मुसलसल उड़ता हुआ जा रहा है नीचे, लेकिन 70 ईयर्स पहले अल्लाह ने इसको फेंका था जहन्नुम के किनारे से, तो ये अब जाके पहुंचा है। वो 70 ईयर्स की मसाफत वो इंसान तय करके ऊपर तक आएगा, वो यानी इतनी जोर से उसके ऊपर लगा है कि वो उछल के ऊपर आया, 70 ईयर्स की मसाफत तय करके ऊपर आया। अस्तग़फिरुल्लाही रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाही रब्बी। और फिर जब वो ऊपर तक आएगा ना तो उसको बाहर नजर आएगा, तो वो चाहेगा कि मैं बाहर निकल आऊं, वो चाहेगा कोई चीज पकड़ लूं जिससे कि मैं बाहर आ जाऊं। तो यूं ही वो ये उम्मीद करेगा कि हाय अभी अभी मैं कोई चीज पकड़ के अभी बाहर आ जाऊं, अभी मैं बाहर आ गया, ऊपर तक आ गया, मैं बाहर निकल आऊं। उसी वक्त उसको कोड़ा मारा जाएगा, यही जो मकामे है ये मारा जाएगा, और वो फिर नीचे जाके उसकी तह से लगेगा, फिर उसको वो आग का शोला आएगा और मारेगा, और वो फिर बाउंस होके ऊपर जाएगा, फिर वहां से वो निकलने के लिए कोशिश करेगा, इरादा करेगा, बस अब नहीं मैं ले सकता इससे ज्यादा, बस बस अब मैं बस बाहर निकल जाऊंगा। उसको एक उम्मीद बंदे की कि बस मैं बाहर निकलने लगा, उसके बाद फिर उसको फरिश्ते मारेंगे और फिर वो नीचे चला जाए। ये होता रहेगा, होता रहेगा। अल्लाह हू अकबर, اللہ ہم آجرنا من النار، اللہ ہم تیرے عذابوں سے ڈرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں تیرے عذابوں سے، تو ہمیں ہماری نسلوں تک کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچا کے رکھنا یا اللہ، یا اللہ جہنم کی ہوا تک نہ ہمیں لگنے پائے، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، اللہ ماجرنا من النار، اللہ ہمیں بچا کے رکھنا آگ کے عذاب سے اور ہر قسم کے عذاب سے۔ جب میں پڑھی تو میں سوچ رہی تھی کہ سب سے بڑی میری ہر وقت کی دعا ہونی چاہیے اللہ ماجرنا من النار، مجھے لگا اس سے بڑی کوئی دعا ہی نہیں، کہ جس کا انجام یہ ہو گیا اس کو دنیا کی ہر نعمت بھی مل گئی ہو، ہر نعمت، ہر آسائش، ہر آسانی، دنیا میں وہ بادشاہوں کی طرح بھی رہا ہو تو جس کا یہ انجام ہو گیا اس نے کچھ نہیں پایا، وہ نقصان ہی نقصان میں، تو اللہ اس انجام سے بچا لینا، اور جس کو اس انجام سے بچنے کی فکر پڑ گئی کیا پھر وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے، کیا پھر وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے۔ اور پھر کیا وہ دنیا کے غموں میں اتنا مبتلا رہ کے اپنی زندگی کو ضائع کر سکتا ہے، جس کو اس کی فکر لگ جائے کیا وہ اپنی وقت کو، جو سرمایہ ہے، اس کو ضائع کر سکتا ہے، اس کو بیکار گنوا سکتا ہے۔ کتنے ہی موقع ملتے ہیں اللہ ماجرنا من النار کہنے کے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم صبح 7 دفعہ گئے اور شام کو 7 دفعہ گئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.